Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
So, Mahesh Pragya, ye dusra ang hua uska. Tisra hua Saptang. इसके सात अंग हैं। अब देखो, उपनिषद हो या पुराण हो या कोई हो, उसमें गिनती में तात्पर्य नहीं होता। गिनती किसी को समझाने के लिए बताई जाती है। अब भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी? कोई कहता है 16,000 थी, कोई कहता है 16,108 थी, कोई कहता है 16,008 थी। डर है तो, और अलग अलग पुराणों में गिनती भी अलग अलग मिल जाती है। तो भाष्यकार ने कई जगह ये बात लिख दी है कि वैदिक साहित्य में गिनती जो होती है वो सिर्फ अनेकता की वाचक होती है, वास्तविक गिनती की वाचक नहीं होती है। अब कलयुग की आयु कितनी है? बोले 4,32,000। अब ब्रह्मा कुमारी कितनी मानते हैं? वो तो पूरा साइकिल ही 5,000 बरस का मानते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 5,000 बरस में पूरे हो जाते हैं। और हमारे हिसाब से तो 43,20,000 बरस में होंगे ना। तो इसमें गिनती में तात्पर्य नहीं है पुराणों का। तात्पर्य यह है कि इतनी देर कलयुग चलेगा? अभी तो कहते हैं प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का। जब प्रथम चरण में ये हाल है कोई सुरक्षित नहीं है ना रहे, तो जब चौथे चरण में पहुंचेंगे तब क्या हाल होगा? सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। ये इसी में तात्पर्य है। मन में जब कलुष आ जाए तो भगवान का नाम लेने से वो कलुष दूर हो जाता है। यही कलयुग है। वहां रामायण में लिखा भी है कि चारों युग जो हैं ये सुबह से शाम तक बरतते हैं। सुबह जब उठते हैं ब्राह्म मुहूर्त में अब कहां उठते हैं ना सुबह 4 बजे से लेकर और 8 बजे तक ये सतयुग का है, और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक नारायण ये द्वापर का है, नहीं त्रेता। पूजा करो, पाठ करो, तैयार हो, और 12 बजे से शाम तक ये द्वापर का है, और फिर रात को ये कलयुग है। सारे ऐब जो है वो रात में ही होते हैं, चाहे वो चोर का हो चाहे साहू का हो। नारायण, तो ये चारों युग 24 घंटे में बीत जाते हैं। तो हर युग में भगवान के आराधना का विधान किया गया है। इसमें ही तात्पर्य है। कलयुग से दोगुना द्वापर और तिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग, तो ऐसे बांट लो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 3 2 2 1, इस रेशो में 24 घंटे को बांट लो बस। और अपनी आराधना का समय निश्चय कर लो कि हमें इस समय में ये काम करना है। अब जैसे ब्राह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? या तो ध्यान करना चाहिए, या तो वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए। सो यह उपलब्धि है, घर पे और चालू कर दो, सो ब्राह्म मुहूर्त पूरा हो जाए। तो जागृत स्थानो बहिष् प्रज्ञा, अब आए सप्तांग। तो सात में सात बता तो रहे हैं, लेकिन गिनती में इसका तात्पर्य नहीं है। आप पूरे शरीर को 7 भागों में डिवाइड कर लो। कैसे करोगे? सांझे से कर लो। लेकिन शंकराचार्य भगवान जो है वो चाहे जैसे के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं श्रुति में जिसका वर्णन मिलता है उसी के हिसाब से करो, अपने मन से क्यों करते हो। दूसरी बात ये है कि यहां शब्द आया है वैश्वानर। तो वैश्वानर माने होता है कि जो विश्व भी हो और नर माने पुरुष भी हो। पुरुष माने मर्द वाला पुरुष नहीं है, तो स्त्री भी पुरुष ही है और पुरुष भी पुरुष ही है, जीव से मतलब। तो जो संपूर्ण विश्व भी रूप भी हो और जीव रूप भी हो, आत्म रूप भी हो, उसको विश्वानर बोलते हैं। और विश्वानर ही व्याकरण की रीति से वैश्वानर बन जाता है, तो उसका नाम वैश्वानर है। तो अगर एक शरीर में ही इसको आप सीमित कर दोगे तो वैश्वानर नाम उसका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहां 7 अंग जो हैं वो समष्टि में हैं, वैसे ही आप अपने शरीर में भी मानो। इसका प्रमाण देते हैं, तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपा प्राण पृथक वर्तमात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रई पृथिव्येव पादौ इति अग्निहोत्र कल्पनाशेषत्वेनो आहवनीयो अग्नि अस्य मुखत्वेनो उक्तो इत्येवं सप्तानि सप्तांगानि यस्य स सप्तांग। ये 7 अंग वाला है। कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो है ये मूर्धा, समझते जाना, अपने शरीर में भी समझते जाना। एक तो है ये मूर्धा, एक है नेत्र, एक है मुख, एक है धड़, एक है प्राण, एक है वस्ति एब्डोमन, एक है चरण और एक है अग्नि जिसमें आहुति डाली जाती है, मुख। तो कहते हैं कि ये जो पुरुष है जागृत अवस्था का, इसकी मूर्धा क्या है कि ये द्यूलोक है। अब समष्टि की तरफ चले जाओ। हाँ, ये द्यूलोक है, ऊपर को उंगली उठ गई। बोले ये नेत्र क्या है इसके, कि जो सूर्य चंद्र चमक रहे हैं ना, ये इसके नेत्र हैं। और इसका मुख क्या है कि अग्नि है, अग्नि में आहुति डालते हैं ना, जो कुछ खाते हो कहां से खाते हो ना, मुंह में ही तो डालते हो, इसलिए इसको मुख बोलते हैं। वहां क्या कहते हैं, मुखाग्नि दी, जो मर जाता है आदमी, वो दूसरा प्रसंग है। तो अग्नि है, फिर धड़ है। बोलिए धड़ क्या है कि ये जो महाकाश है ये ही उसका धड़ है। और इसमें प्राण क्या है, लंग्स तो इसी में है ना, धड़ के अंदर फेफड़े, तो जो धौंकनी चल रही है तो इस आकाश में क्या धौंकनी चल रही है, बोले प्राण जो वायु जो चल रही है वो ही इसके प्राण है। और फिर यहां पर नीचे ये जल का क्षेत्र है, तो ये जल जो है पूरी सृष्टि में ये इसकी वस्ती है और चरण इसकी पृथ्वी है। अब स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स में जब आप पढ़ोगे ना, वो कहते हैं मैं ही भारत हूं, कश्मीर मेरा सिर है। अब वो तो कश्मीर मेरा सिर है और कन्याकुमारी मेरे चरण है और आसाम मेरा दायां हाथ है और गुजरात जो है, या उस समय तो वो था अफगानिस्तान तक, ये मेरा बायां हाथ है। तो ये सब एक एक देश के साथ एकता करने से आपको अनुभव में आ जाएगा। यहां तो पूरी सृष्टि के साथ एकता की बता रहे हैं, क्योंकि यहां आत्मा को ब्रह्म बताना है, यहां आत्मा को किसी देश वाला नहीं बताना है। तो जहां तक आपकी बुद्धि फैल सकती है उसको फैलाइए, और जो समष्टि में है वो ही व्यष्टि में है। एक बात। दूसरी बात ये, महाराज श्री कहते थे कि समष्टि कुछ होती नहीं है। बोले समष्टि कुछ होती नहीं है, ये व्यष्टि की कल्पना है, जिसको अपन लोग साइंस में बोलते हैं ना जनरलाइजेशन। जो कुछ आप एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं वो तो कोई पर्टिकुलर रिजल्ट्स निकालते हैं, फिर कहते हैं क्या ये बात सब पे लागू हो सकती है, तो उसी को फिर जनरलाइज करते हैं। तो ये समष्टि जिसको हम बोलते हैं, तो पहले व्यष्टि 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 का अध्ययन कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि अब सब यही बात समष्टि में है। नारायण, तो ये व्यष्टि ही समष्टि की कल्पना करता है, क्योंकि व्यष्टि की बुद्धि खुली नहीं है, वो तो बनी है ना शरीर के साथ में, तो उसके पीछे तो कर्म संस्कार का बंधन है। वो चाहे जितनी उड़ान भरे लेकिन अनंत में उड़ान उसकी नहीं। कहते हैं मच्छर भी उड़ा और गरुड़ जी भी उड़े, तो पता लगाओ कि आकाश कितना लंबा चौड़ा है। तो मच्छर तो थोड़ी देर उड़ने के बाद आ गया, बोले पता लगाया है कि हाँ जी कि कितना है, कि अनंत है जी। मैंने उसके लिए तो 100-200 फीट पर ही जो है अनंतता महसूस होने लगी, और गरुड़ तो उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, दसियों साल में लौट करके आए, बोले पता लगाया है कि हाँ लगाया है, क्या है कि अनंत। तो जो बात गरुड़ जी ने 100 वर्ष में प्राप्त जानी उसने एक घंटे में ही जान लिया है। तो अनंत को आप अपनी बुद्धि से पकड़ नहीं सकते, सिर्फ अपनी पकड़ को आप छोड़ दो तो अनंत ही है, शांत को छोड़ दो तो अनंत है, जो शांत नहीं है वही अनंत है। अनंत कोई वस्तु नहीं होती है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो कहा जाता है ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म अनंत सत है, अनंत ज्ञान स्वरूप है, तो वहां अनंत का मतलब अपरिच्छिन्न, माने निषेध के अर्थ में है ना, परिच्छिन्नता का निषेध करके जो सत्य है, परिच्छिन्नता का निषेध करके जो ज्ञान है, वही परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप है। अपनी कैंचुड़ी का त्याग कर दीजिए, यही मतलब। तो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग, अब अगर समष्टि में आप सोचते हो तो ये जागृत अवस्था का अभिमानी कौन हुआ फिर? जैसे एक शरीर में तो अभिमानी मैं हूं, ये साफ मालूम पड़ता है कि मेरी जागृत अवस्था है, मैं इसका अभिमानी हूं। अब सारे संसार में जब आप फैल गए हो विचार के द्वारा, तो उस समय ये अभिमानी कौन होगा? क्या यही डिबिया में बंद जो छोटा सा है? तो बोले नहीं, इसके लिए फिर शास्त्र ने और शब्दों को गढ़ा। उन्होंने कहा जरा याद कर लेना, सबसे पहले अव्यक्त था, फिर उसके बाद हिरण्यगर्भ हुआ, फिर उसके बाद विराट हुआ, विराट के बाद फिर पंचभूत हुए सूक्ष्म भूत, फिर पंचीकरण हुआ तो महाभूत हो गए, फिर आपस में मिले तो सात्विक राजस तामस, इन अंशों से ये सब इंद्रियां मन बुद्धि शरीर ये सब बनते चले गए। अब जब उल्टी गिनती करेंगे और समष्टि में व्यष्टि को छोड़ेंगे, तो मैं इस शरीर वाला जागृत अवस्था का अभिमानी, इसको भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, फिर क्या छोड़ेंगे? कि मैं विराट हूं, तो फिर वैश्वानर का अर्थ हो जाएगा विराट। और अगर विराट नहीं लेंगे तो अयम आत्मा तक तो पहुंच जाओगे लेकिन ब्रह्म तक नहीं पहुंचोगे। ये साक्षी तो पकड़ना बहुत आसान है, इसमें किसी शास्त्र की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा ही विवेक होना चाहिए। मैं सबको जान रहा हूं, जानने वाला घट का ज्ञाता घट से अलग होता है, इसलिए मैं साक्षी सारी दुनिया से अलग हूं। जो हो गया साक्षी अब बोले हम क्या कर रहे हैं कि हम साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं। तो साधना भी होती है लेकिन ओवर सिंप्लीफिकेशन किसी चीज का नहीं करना चाहिए। शास्त्र में जो रीति है उसी रीति से चलेंगे तब तो पहुंचेंगे वहां जहां पहुंचाना चाहता है शास्त्र, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। जो कहते हैं कि सप्तांग, तो ये सात अंगों वाला विराट है समष्टि में, और एक शरीर में उसी विराट का जो प्रतिबिंब है उसको बोलते हैं विश्व। विश्वानर नहीं, विश्व शॉर्ट फॉर्म कर दियो। एक शरीर में विश्व और समष्टि में वैश्वानर अर्थात विराट। अच्छा जी, एको न विंशति मुखः। अब ये जो जागृत अवस्था का अभिमानी है ये वहां बैठा बैठा करता क्या है, क्या करता है? बोले भोग करता है। किनका भोग करता है? ये स्थूल भोग, स्थूल विषयों का भोग करता है। दाल रोटी ये तो स्थूल है ना, ये जो कुछ भी चीज का हम भीतर ले जाते हैं इंद्रियों के द्वारा, यही तो भोग है। तो स्थूल पदार्थों के द्वारा हम भोग करते हैं, तो हम भोग तो हो गए लेकिन किन कारणों के भोग के जो कारण है, यंत्र है हमारे पास, वो क्या है? बोले एको न विंशति मुखः, 19 मुखों से हम भोग करते हैं। खाना तो इस छोटे से मुख से होता है लेकिन 19 माने तो वही सूक्ष्म शरीर है, समझ लो। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 प्राण, 5 × 3 = 15 और 4 = 19। 19 मुखों से भोग करता है। एक जगह भाष्यकार ने लिखा है कि जैसे राजा को व्यापारी लोग टैक्स देते हैं, ऐसे ही ये इंद्रियां जो हैं, माने ये 19 तत्व जो हैं, ये बाहर से भोग ले ले करके और टैक्स देते हैं किसको? राजा को, अर्थात आत्मा को, भोक्ता जीव को। क्योंकि इस शरीर में ये जो आत्मा आया हुआ है उसका एकमात्र कारण भोग ही है। अगर पहले हम भोक्ता ना हुए होते तो ये शरीर बनता ही नहीं। तो बोले फिर तो खुली छुट्टी मिल गई, खूब भोग करो क्योंकि ये शरीर भोगने के लिए मिला है। तो शास्त्र ने कहा करो, लेकिन गले में फांसी लगाने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन करोगे तो जेल भी जाओगे, अगर मरोगे नहीं बच गए तो जेल भी जाओगे। आत्महत्या तो हर तरीके से पाप है, कानून से भी पाप है और शास्त्र के हिसाब से भी महापापों में आत्महत्या है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी है, भोग में स्वतंत्र है इसलिए चाहे जो कुछ भोग है, ये नहीं। तो मर्यादित भोग के लिए तो है, और सभी कुछ ना कुछ शरीर की रक्षा के लिए भोग करते ही हैं। लेकिन भोग शब्द का अर्थ गलत मत लगाना। भोग माने सुख लेते हुए भोग करना एक तो ये होता है, और एक ये भूख लगी है तो मुंह में तो कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा, तो डालो और स्वाद भी लो, वो भी ठीक है। जीभ स्वाद बताएगी, सुख नहीं बताएगी। सुख तो मन बताता है, तो मन को ऐसा होना चाहिए कि इन चीजों में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है। वही जब हम बाहर की वस्तुओं में डाल देते हैं पहले, फिर उसको जब हम स्वीकार करते हैं तो हमें लगता है कि ये इस वस्तु से आया, लेकिन पहले हम उसमें डाल देते हैं। महत्व बुद्धि स्थापित कर देते हैं उसमें, ये चीज बहुत सुखी। तो एको निविंशत मुखा स्थूल भोगों को वो भोक्ता बनता है। तो एक शरीर के भोग तो आपको समझ में आ रहे हैं, वैसे कर्मकांड के हिसाब से, पूर्व मीमांसा के हिसाब से वस्तु जो है इनका भोग नहीं होता। उन वस्तुओं से जो सुख दुख होता है, सुख दुख के भोग को ही भोग मानते हैं। अब ज्ञानी का भी प्रारब्ध तो शरीर में रहता ही है ना, तो प्रारब्ध तो भोग तो प्रस्तुत करेगा, लेकिन उसने अपने मशीनरी को, मन बुद्धि को सुख दुख प्रूफ बना लिया। महाराष्ट्र के शब्द में कि आपकी घड़ी वाटर प्रूफ होती है, नारायण तो पानी भीतर नहीं घुसता है, डाल दो पानी में। तो ऐसे ही ज्ञानी की जो ये अंतःकरण है, बुद्धि है, मन है, ये सुख दुख प्रूफ होना चाहिए। हमें मालूम है कि सुख तो केवल आत्मा में ही है, और संसार में दुख ही दुख है। ये साधन कक्षा की चीजें वास्तविक नहीं है, उनसे छुड़ाने के लिए वहां दुख का आरोप किया जाता है। और थोड़ा बहुत तो सबको अनुभव है कि दुख होता है, पहले सुख होता है पीछे दुख हो जाता है, किसी में पहले ही दुख होता है और किसी में पहले भी दुख होता है पीछे भी दुख होता है। ये गीता में 18वें अध्याय में बताए हैं, सात्विक राजस तामस सुख। तो सात्विक सुख तो लीजिए आप। तो एक शरीर के सुख दुख का तो पता चल गया, अब अगर वैश्वानर इसका अर्थ करेंगे विराट, तो विराट क्या भोग करता है फिर? तो विराट नारायण अपने लिए कुछ भोग नहीं करता, वो तो भोगवाता है। वो व्यष्टि के, व्यक्ति के सुख दुख का नियामक है, फलदाता जो है वो वही है। अरे भाई, पांचों भूत उसके अंडर में है, उन्हीं से इंद्रियां बनी, शरीर बना। तो विराट की जो नियति है, वही नियति हमारे आपके शरीर में काम करेगी। वो आपने कथा सुनी होगी ना, उसमें छांदोग्य उपनिषद, अशुपति राजा था, बहुत दान करता था अन्न का, उसकी ख्याति, अशुपति नहीं, जानश्रुति राजा था, तो अन्न का बहुत दान करता था, बड़ी ख्याति थी उसकी। तो एक दिन वो अपने बाग में सो रहा था, ऊपर से दो हंस उड़ते हुए गए, महात्मा लोग थे, हंस माने हंस महात्मा, सन्यासियों के विभागों में एक हंस भी होता, कथा में तो हंस लिखा हुआ। तो दो महात्मा उड़ते हुए गए आकाश मार्ग से, तो एक हंस ने कहा कि नीचे जो राजा सो रहा है, ये तो बहुत बड़ा दानी है, सारी दुनिया में इसकी ख्याति हो रही है। दूसरे ने कहा, अरे ये क्या है, जितना ये दान करता है ना, उस सब का फल तो वो रैक को ले जाता है, गाड़ी वाला रैक को ले जाता है। अब वो तो कह के चला गया, अब राजा तो बिलबिला गया, बोले मैं इतना दान करता हूं, ये मेरा प्रतिद्वंदी कहां से निकल आया। सुबह उठ के उसने कहा भाई देखो ये कौन है रैक को, सारा राज्य छान मारा, कहीं कोई आदमी समझते थे बहुत बड़ा सेठ होगा कोई तभी तो इतना दान करेगा, अब न सेठों में कहीं गिनती हुई उसकी न और बड़े बड़े आदमियों में गिनती हुई। बोले और खोजो और खोजो, फिर बोले जी एक रैक नाम का कोड ही तो है, वो एक बैलगाड़ी के नीचे रहता है, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं उसके ऊपर। बोले चलते पूछते हैं उस, जब और दूसरा कोई है ही नहीं तो हो सकता है यही हो। तुम आ गए, बोले महाराज हमने सुना है कि आप सब दानों का फल आप ले जाते हो, वो कौन सी विद्या है आप? बोले भाया सा ऐसे विद्या दी जाती है, तू राजा है तुम ऐसे ही दे दू? बोले नहीं आप ये सोना चांदी मैं लाया हूं इसे स्वीकार कर। अच्छा तो तू विद्या को खरीदना चाहता है, आ गया सा ले गए। फिर वो अपनी लड़की को लेके आए, बोले महाराज इससे मैं लड़की आपको देता हूं ये आपकी सेवा करेगी, इससे बड़ा दान तो और कोई है नहीं, आप स्वीकार करो। बोले भाई मेरे पास रहने को जगह नहीं है, मैं इसे स्वीकार करके क्या करूंगा? तो बोले मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। तो उन्होंने कहा मेरी क्या सेवा करेगी ये? बोले आपकी जो मक्खियां हैं ना ये, इन मक्खियों को उड़ाती रही। तो बोले अच्छा बैठ तुझे बताता। तो उसने कहा मैं अपने को गाड़ी वाला रैक को नहीं मानता, मैं अपने को विराट मानता हूं, विराट पुरुष मानता हूं। तो संसार में जो कोई भी कुछ भी करता है वो सब फल मुझे बिना किए हुए ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सबके शरीरों में रह करके मैं ही भोग भोगता हूं। जो सबके शरीरों में रह करके भोग भोगता है उसे कोई लेप नहीं होता, ये वहां विद्या विराट की बताई गई है। शेष चर्चा फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।